मुझे तो सिविल सर्विसेज का पता भी नहीं था कि क्या है। मेरे को सिविल सर्विसेज और सिविल इंजीनियरिंग में भी डिफरेंस पता नहीं था। मैंने दे दिया पहला अटेम्प्ट और वो लॉजिकल था कि होना तो नहीं था। अब तो मैं एकदम परेशान हो चुका था क्योंकि 4 अटेम्प्ट हो चुके थे और हाथ में कुछ भी नहीं था, जॉब भी छोड़ चुका था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोगों का क्लियर होता है वो कैसे क्लियर होता है ऐसे ही। फिर मैंने खुद मन बनाया फिर से यार कि एक बार लेट्स गिव वन लास्ट ट्राई। क्योंकि सभी को नमस्कार। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम खुद को बहुत रिलेट कर पाते हैं। मैं भी खुद को लक्ष्य मूवी जो आई थी ऋतिक रोशन की, उससे काफ़ी रिलेट करता हूँ खुद को। क्योंकि उसमें जिस तरह से वो ट्रांजिशन दिखाते हैं एक एमलेस से लड़के का जिसको लाइफ में क्या करना है कुछ पता ही नहीं है और फिर भी वो कुछ कर रहा होता है, जो भेड़ चाल को फॉलो कर रहा होता है, तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ा बहुत वैसा ही था। और फिर एक ट्रांजिशन आती है उसकी लाइफ में, वो कैसे अपने एम को अचीव करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा लाइफ है ये भी थोड़ी बहुत वैसी ही है। मेरा नाम पार्थ गुप्ता है। मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है उसमें 72 रैंक प्राप्त किया है। और आज मैं आपको अपनी यही जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ इस पूरी जर्नी में। तो मैं जम्मू से आता हूँ, तो मेरी पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई यहीं पर हुई है 12th क्लास तक। मैं बचपन से पढ़ने में ठीक स्टूडेंट था, इनफैक्ट अच्छा ही स्टूडेंट था, बट मुझे कभी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है लाइफ में। बचपन में तो मैं सोचता था कि यार साइंटिस्ट बनते हैं, या कभी होता था कि सोल्जर बनेंगे। बट धीरे धीरे जब 10th क्लास पास की तो फिर एक ही ऑप्शन था, इंजीनियरिंग करेंगे, जैसे कि पूरी इंडिया में सभी कर रहे थे। और तैयारी शुरू करी इंजीनियरिंग, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी, AIEEE और IIT JEE उस समय होते थे। और लकीली मेरा उनमें हो भी गया अच्छे से। फिर मैंने अपनी BTEC की है NIT हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश में जो है। वहाँ से जब मैं BTEC कर रहा था, ये जो कॉलेज का फेज़ होता है हर एक की लाइफ का, एक काफ़ी एक मोल्डिंग फेज़ होता है। इसमें आपको पता चलता है कि यार आप क्या क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन की और उस दौरान मैं अपने कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कमेटी होती है जो हमारी, उसमें मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव था अपनी ब्रांच का। तो वो जो काम था, वो काम मुझे लगता है कि उस काम ने मुझे एक तरह से पब्लिक सर्विस के लिए थोड़ा सा इनिशियल ट्रेनिंग दे दी थी। हालाँकि मैंने कभी भी सिविल सर्विसेज़ के बारे में नहीं सोचा था अपने इंजीनियरिंग पास करने तक, इनफैक्ट जब मैं जॉब भी कर रहा था। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने 10th क्लास में अपने स्कूल में, लकीली मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ले लिए थे। और जब न्यूज़पेपर जो आए, न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जो आए थे, उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या करोगे, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि ये सिविल सर्विसेज़ करेगा। तो उन्होंने वही लाइन वहाँ पर लिख भी दी थी। और मुझे तो सिविल सर्विसेज़ का पता भी नहीं था कि क्या है। मेरे को सिविल सर्विसेज़ और सिविल इंजीनियरिंग में भी डिफरेंस पता नहीं था। तो दैट वाज द सिनेरियो। लेकिन हाँ, तो मैं बीटेक पे था, बीटेक करी और लकीली वहाँ से जॉब भी लग गई। तो जॉब लग गई तो बैंगलोर आ गए। फिर बैंगलोर में काम कर रहे थे, काम अच्छा था, बढ़िया था, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन फिर क्या है कि धीरे धीरे जब ऑलमोस्ट एक साल के बाद मुझे लगा यार कि कुछ मिसिंग है कुछ, तो क्योंकि मुझे कभी मतलब जॉब ऐसी नहीं चाहिए थी जिसमें सिर्फ मतलब काम करो और पैसा कमाओ। मुझे कुछ और भी एलिमेंट चाहिए था कि मतलब जिससे एक आपका लोगों के साथ एक कनेक्ट बना रहे। क्योंकि क्या होता था कि मैं वैसे तो मैं जम्मू में पला बड़ा हूँ सिटी में, बट जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी या ऐसे छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ, तो हम अपने गाँव जाया करते थे। मेरा गाँव कठुआ ज़िले में है, तो वहाँ पर जब मैं जाता था तो वहाँ की सड़कें देखो। और वहाँ क्या होता था कि कुछ टाइम पहले बहुत ही दूर दूर के गांवों से लोग वहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वहाँ जो यूथ है वो खुद बाहर माइग्रेट कर रहा है वहाँ, क्योंकि पढ़ने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। तो मुझे लगता था कि यार कुछ तो करना चाहिए। और फिर मैं पूछता था वहाँ गाँव के, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ही ज़्यादा बचे हुए थे वहाँ पर, तो उनसे पूछते थे कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं करते हो कुछ। कहते हम क्या करेंगे, जो लोग यहाँ से मतलब थे, बिलोंग करते हैं, पर वो बाहर चले गए हैं और अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे लगता था यार कि ये जो कनेक्ट उनको भी होना चाहिए था अपने रूट से, वो शायद उनको भी मिसिंग था या किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें, और एक और फैक्टर था मेरी मदर का, क्योंकि मेरी अम्मा वैसे पहले भी चाहती थी कि सिविल सर्विसेज करे, उनकी जॉब प्रोफाइल देख के मुझे लगता था कि यार एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और मतलब जितने क्वालिफाइड हमारे टीचर्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने टीचिंग रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर लें उनके पोटेंशियल को, तो हम सही में एजुकेशन में तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो यही कुछ फैक्टर्स थे, मुझे लगा कि यार मुझे इतना कुछ आइडियाज़ है मेरे दिमाग में, तो मैं क्यों ना सिविल सर्विसेज में कुछ ट्राई करूँ, और पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही लेता हूँ, तो लेट्स ट्राई। तो 2015 में जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, मैं जॉब के साथ 13 था, तब मैंने पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा की नहीं, मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट देखते हैं। और मेरा एक फ्रेंड भी था, उसने भी कहा था यार ऐसे ही दे देते हैं बिना पढ़े ही। तो तब तो पता नहीं था कि, क्योंकि लोग बहुत ऐसे बचा बचा के अटैम्प्ट बचा बचा के देते हैं, तो मेरा तो था कि भाई आन दो, तो मैंने दे दिया पहला अटैम्प्ट। और वो लॉजिकल था कि होना तो नहीं था क्योंकि पढ़ाई नहीं की थी कुछ, पर उस अटैम्प्ट को देख के मुझे ये समझ में आया कि यार प्रीलिम्स इज़ डूएबल। क्योंकि मैंने जब प्रीलिम्स का पेपर देखा तो मुझे समझ आया कि इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे, और वो इजी क्वेश्चंस अगर मैं सही से कर लूँ, मेरे एटलीस्ट 50 out of 200 जो उसका स्कोर होता है वो तो मेरे श्योर शॉट थे। तो 2016 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया, तब भी मैं जॉब कर रहा था, मैंने मतलब एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले जॉब रिज़ाइन कर दी थी, और उन 2-3 महीने में मैंने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली थी, तो इस बार प्रीलिम्स हो गया। पर ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, इसमें 3 stages होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू लॉजिकली इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस, ठीक है, लेकिन अब मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया और मेंस की मैंने तैयारी की नहीं थी। मैंने ऑप्शनल, जो मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मैंने GS प्रीलिम्स स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़ी थी बस, और मैंने ऑप्शनल की तैयारी नहीं की थी। तो वही जो 3 महीने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें मैंने कोशिश करी कि पढ़ूं, बट कुछ ज़्यादा तैयारी हुई नहीं। तो इस बार लॉजिकल ये था कि मेरा नहीं होगा मेंस, और वही हुआ, इस बार मेरा मेंस नहीं हुआ। बट अगेन इससे भी मैंने लेसन ये लिया कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो इस बार, तो प्रीलिम्स देने से पहले आपका मेंस का सिलेबस पूरा होना चाहिए, क्योंकि देन यू हैव, उस समय आपका चांस बनता है कि आप क्लियर कर लोगे इस बार। तो फिर मैं अपने जो हमारे मेंटर थे वहाँ पे, केरला से आते हैं गोपा कुमार सर, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर इस बार मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री पूरा अच्छे से करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्लान बताओ और मैं आपको पेपर्स दूँगा, आप उन पेपर्स को लिखो। तो वही हुआ, फिर मैंने रेगुलरली पेपर्स देना शुरू किए, और मेरे हिस्ट्री इस बार मैंने अच्छे से कवर कर लिया था, और GS भी मैंने अच्छे नोट्स बना लिए थे। तो इस बार प्रीलिम्स भी हो गया 2017 का अटैम्प्ट जो था, मेंस भी हो गया। बट इस बार क्या था कि मेंस में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, और इंटरव्यू भी इतना कोई खास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था पहला इंटरव्यू, और काफ़ी एंग्जाइटी थी। तो अल्टीमेटली मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार नहीं होगा इंटरव्यू, मतलब फाइनल कट ऑफ में, और वही हुआ भी इस बार कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसा होता है ना, जब आपका प्रीलिम्स नहीं हो तो थोड़ा दुख होता है, जब आपका मेंस नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है, पर जब इंटरव्यू तक पहुंच के कटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो वही, वो उस समय तो मैं एकदम परेशान सा हो गया था, रो रहा था, घर वालों से बात कर रहा था, दोस्तों से। मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मुझे एक किताब भेजी, मतलब किताब तो नॉर्मल थी, ऐसे कोई मोटिवेशनल किताब नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा मोटिवेशन में मैं बिलीव नहीं करता, पर उसने उसके साथ एक मैसेज लिख के भेजा था कि यार तू कर सकता है ये वो, तूने इतना किया, इस लेवल तक पहुंचा है। तो वही कुछ चीज़ें थी, मेरे को लगा कि यार चलो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। फिर 2018 में इस बार प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया। इस बार लेकिन पंगा ये था कि मैं 2 किश्तियों में सवार हो गया, मैं स्टेट PSC भी दे रहा था और UPSC भी दे रहा था। और ऐसा ही होता है जब आप 2 अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उनका सिलेबस अलग था। तो फिर इस बार मैं UPSC में कुछ ज़्यादा क्वालिटी एडिशन नहीं कर पाया, तो जब ऐसा हो गया तो फिर इस बार भी ज़्यादा कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और फाइनली नहीं हुआ। तो अब तो मैं एकदम परेशान हो चुका था, क्योंकि 4 अटैम्प्ट हो चुके थे और हाथ में कुछ भी नहीं था, जॉब भी छोड़ चुका था। तो इस समय मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब जैसे जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, तो मतलब मैं इमिडिएटली ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को। जैसे रिज़ल्ट आया तो मैं एकदम सा चुप सा हो गया था। तो घर पे पापा आए शाम को, कहते कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऐसी नॉर्मल, वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुझे लगा यार ये कैसे, ऐसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे लिए ऐसे नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, उनको भी अपने लेवल पर तो बहुत टेंशन थी उनको भी, बट यही कुछ चीज़ें थी। और फिर उस समय सभी ने मेरे को, घर वालों ने कहा कि यार अब तू बैंगलोर छोड़, क्योंकि मैं बैंगलोर में तैयारी कर रहा था अभी तक। तो बैंगलोर में क्या था कि आई वॉज़ इन माई कम्फर्ट जोन, तो वहाँ पर मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी, मतलब मैं ऐसी 2-3 आंसर्स लिखता था और अपने जो मेंटर थे उनको दिखाता था। तो फिर मेरे को उन्होंने, घर वालों ने कहा कि अब तू दिल्ली आ रहा है और दिल्ली में यहाँ पे बैठ के टेस्ट सीरीज़ देगा। तो फिर मैंने कहा, पेनफुल तो है क्योंकि मेरा बैंगलोर में स्टडी ग्रुप था, वहाँ पे हमारे डिस्कशंस होती थी, तो वो स्टडी ग्रुप छूट गया, मैं दिल्ली आ गया यहाँ पर एकदम अकेला। और ये आपने अगर करोल बाग और ये वाले एरियाज़ में देखा हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है ये एनवायरनमेंट पढ़ाई वाला। तो यही देख के मैं मतलब परेशान भी हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एकदम इंटेंस प्रिपरेशन हुई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोगों का क्लियर होता है वो कैसे क्लियर होता है, ऐसे जब रगड़ना पड़ता है। तो फिर उस बार क्या हुआ कि मेरा जीएस में स्कोर इम्प्रूव हुआ, ऑप्शनल में स्कोर इम्प्रूव हुआ, इंटरव्यू में भी इम्प्रूव हुआ, और फाइनली 2019 का जो अटैम्प्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। आई गॉट 240th रैंक और उसके बाद मेरा IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिलेक्शन हो गया। तो जब सिलेक्शन हो गया तब तो मैं एकदम सेटिस्फाइड था कि अब और देना है कि नहीं देना देखते हैं। तो फिर बाकी ऐसे ही उस दिन, वो साल तो मेरा ऐसे चिल मारा मैंने, क्योंकि 2019 मतलब 2020 में रिजल्ट आया, तो 2020 में फिर फाउंडेशन कोर्स किया, यहाँ वहाँ गए। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि जो मेरा इनिशियल एम था कि मुझे एजुकेशन की फील्ड में करना है कुछ, और जैसे रूरल एरिया की डेवलपमेंट, तो मुझे लगा यार ये जो प्रेजेंट सर्विस है वो बहुत अच्छी सर्विस है, बट जो काम मुझे करना था वो ये नहीं था, एक्चुअल काम जो मुझे करना था वो तो कुछ और था। तो फिर मैंने खुद मन बनाया फिर से यार कि एक बार लेट्स गिव वन लास्ट ट्राई, क्योंकि अब एक ही अटैम्प्ट बचा ऐसे भी वैसे भी, तो ये अटैम्प्ट देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो फिर वही, इस बार मैंने अटैम्प्ट देने के लिए पूरा अपना टाइम लिया, अच्छे नोट्स प्रॉपर तैयार किए, हिस्ट्री ऑप्शनल और अच्छे से तैयार किया, टेस्ट सीरीज़ वही दोबारा, और इस बार लकीली सब कुछ सही हो गया और रैंक मेरा इम्प्रूव हो गया 72। और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मिल जाएगा। अब जब मैं अपनी स्टोरी को देखता हूँ अपनी तैयारी से और तैयारी से पहले से स्कूल टाइम से, तो मुझे लगता है यार क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे लक्ष्य मूवी में वो जो मेन कैरेक्टर ऋतिक रोशन जो प्ले करता है, उसे कुछ पता नहीं है, तो वो एंड में जो पीक 5879 है उसको क्लाइम करके उस पर तिरंगा लहराता है। तो मुझे भी ये लगता है यार कि चलो शायद मैंने भी इस अटेम्प्ट में ये पीक हासिल कर ली है अपनी। मुझे जो जर्नी में, अपनी पूरी जर्नी में कुछ चीज़ें जो लगी कि एक तो करेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, करेज और ऑनेस्टी, और ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं। अगर आपके अंदर करेज नहीं होगी आप ऑनेस्ट नहीं हो पाओगे अपने आप से, किसी और से, और ऑनेस्टी से आपकी करेज बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको अपनी कोई गलती भी एक्सेप्ट करनी है ना, उसके लिए भी करेज चाहिए। तो आप हिम्मत रखो हर चीज़ में, अगर आपको लग रहा है कि यार इस चीज़ के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा और वहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी, या आपको घर छोड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप वो डिसीजन लो, डरो मत बस किसी चीज़ से।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।